सुधीजनों देवियों, आज श्रावणी पूर्णिमा है। पूर्णिमा जो श्रावण मास में होती है उसे श्रावण पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। श्रावण मास का मतलब जो रेनी सीजन होता है, जो बारिश का मौसम होता है, उसमें एक महीने का नाम है श्रावण। ये श्रावण का मतलब होता है जहां श्रवण ज्यादा होता है। श्रवण मतलब सुनना। अब देख रहे हैं बारिश के मौसम है, और भारत में जब बारिश के मौसम में दो तीन महीने तक झमाझम बारिश होती रहती है, वो यहां की तरह नहीं कि साल भर थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी ज्यादा फिर धूप फिर धूप। जब बारिश होती है तो बारिश होती है। और बारिश के मौसम में तीन चीजें हमें सुनने को मिलती थी। प्राचीन काल में ऋग्वेद में इसके लिए बड़ा एक सुंदर वर्णन आता है कि संवत्सरम शशयान ब्राह्मण व्रतचारिण वाचम पर्जन्य जिन्वताम प्रमंडुकावादिशु। कि साल भर सोए हुए जो मेंढक हैं वो बारिश के मौसम में टर्र टर्र करते रहते हैं। साल भर सोए हुए जो बादल हैं वो बारिश के मौसम में मंडराते हैं और झमाझम बारिश करते रहते हैं, झमझम आवाज करते हैं। साल भर अपनी पढ़ाई लिखाई प्रचार में व्यस्त जो विद्वान ब्राह्मण लोग हैं वो बारिश के मौसम में आना जाना बंद कर देते हैं और अपने जहां भी रह करके वेद पाठ वेद मंत्रों से ओम के उच्चारण से गुंजाते रहते हैं। इसीलिए श्रावण के महीने को श्रावण कहते हैं, क्योंकि वहां सुनने को मिलता है बारिश की आवाज, मेंढक के टर टराहट और विद्वानों के वेद पाठियों के वेद मंत्र। इसीलिए इसे श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ प्राचीन काल में, आज भी बहुत सारे जो खास करके जैन धर्म में भी हमारे यहाँ भी जो श्रमण और सन्यासी लोग हैं वो चातुर्मास्य करते हैं। चातुर्मास्य का मतलब चार महीने जो बारिश का मौसम होता है वो रहने दीजिए अभी, वो चार महीने तक, क्योंकि पहले जमाने में इतने सारे रास्ते नहीं होते थे, ब्रिज पोल नहीं होते थे, तो जो घूम घूम करके प्रचार करते थे साधु सन्यासी वानप्रस्थी विद्वान ब्राह्मण लोग वो जा नहीं पाते थे, जंगल बहुत होता था, तो उनको वो तीन चार महीने एक जगह रुकना पड़ता था। और रुककर क्या करेंगे, तो रिफ्रेश करते थे, जो उन्होंने पढ़ा है जो कुछ किया है उसको दोबारा गुनगुनाते थे, या आसपास के जो लोग हैं उनको ज्ञान देते थे। आज वो विद्या की परंपरा तो हिंदुओं में खत्म हो गई, स्वाध्याय की परंपरा। हम क्या है जानने के लिए हम अंग्रेजों से सीखते हैं, हम वेबसाइट से ढूंढ ढूंढ कर पता लगाते हैं कि मैं हिंदू हूं तो मैं क्या हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरा ग्रंथ क्या है, मेरी देवता क्या है। और वो वेबसाइट पे लिखने वाले ज्यादातर क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, वेस्टर्न विद्वान होते हैं, हम उनसे सीखते हैं क्योंकि स्वाध्याय खत्म हो गया। तो वो जो चार महीने होता था स्वाध्याय करने के लिए होता था, सेल्फ स्टडी, अपने आप पढ़ने के लिए, जो पढ़े हुए हैं उसको रिफ्रेश करो और नई कुछ जानो। फिर साल भर वो जो चार महीने आप पढ़ते हैं वो आठ महीने तक आप उसको प्रचार करेंगे। और बड़ी मजेदार बात देखेंगे, आज जितने भी प्रचारक आप मिलेंगे, सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर या धर्म प्रचारक, वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है मतलब उनको खुद के धर्म के बारे में बहुत कम पता, जितना वो बोलते हैं उतने भी सुनी सुनाई बातों पर बोलते हैं। आप किसी से बात करना शुरू कर दो वो चार घंटे आपको लेक्चर झाड़ेगा धर्म के बारे में, कौन सा ग्रंथ पढ़ा है, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है। तो आप प्रचारक ज्यादा हो गए, पढ़ने वाले कम हो गए। पहले पढ़ते लिखते थे तब फिर निकलते थे कुछ बोलने के लिए। इसीलिए आज प्रचार करने वालों को कोई कीमत नहीं होता है, लोग मुंह झाड़ के भाग जाते हैं। श्रावणी पूर्णिमा स्वाध्याय का पर्व होता है, श्रावण मास। कि इस दिन आज भी भारत के बहुत सारे जगह पर, खास करके साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, नॉर्थ इंडिया में तो स्वाध्याय की परंपरा थोड़ी ज्यादा ढीली है, पर काशी में, उत्तर प्रदेश में मिथिला में, बिहार के मिथिला में आपको आज भी वो परंपरा मिलेगी। श्रावणी पूर्णिमा के दिन लोग अपने जनेऊ बदलते, नए जनेऊ धारण करते। ये जनेऊ का क्या कंसेप्ट है श्रावण पूर्णिमा के साथ, पहले हमने चर्चा की है। जो उपनयन संस्कार होता था, जो जनेऊ संस्कार, वो एक तरह के आजकल के मॉडर्न भाषा में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में अगर देखें, स्कूल में एडमिशन होना होता है। जैसे आजकल बच्चे को स्कूल में एडमिशन करते हैं, और जब वो स्कूल में एडमिट हो जाता है तो उसको एक आई कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, वो बैकपैक लेकर स्कूल जाता है, उसमें किताबें होते हैं, उसकी यूनिफॉर्म होता है। वो जो एडमिशन प्रोसेस है उसी को उपनयन कहते हैं। जनेऊ संस्कार को संस्कृत में उपनयन कहते हैं। उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना। किसके पास? टीचर के पास। पहले स्कूल तो सरकारी स्कूल तो हुआ नहीं करते थे। जो टीचर होता था, गुरु होता था, वो अपने घर में गुरुकुल खोलता था। और वो भी, वो बच्चा ऐसा नहीं कि आजकल की तरह स्कूल सुबह 8 बजे जाएगा और शाम को 5 बजे गाड़ी छोड़ जाएगी, आप ले आएंगे। 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में जब भी माँ बाप बच्चे को ले जाएंगे गुरुकुल के आश्रम में, गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में उसका जनेऊ संस्कार होता था, मतलब एडमिशन होता था। और उसका आइडेंटिटी कार्ड क्या होता था? जनेऊ। अगर किसी के गले में जनेऊ है वो ब्राह्मण है। आजकल का ब्राह्मण नहीं, जो घर में मांस खा करके मंदिर में पूजा करता है और हिंदू धर्म की रक्षा की बात करता है, जिसको वेद का नाम भी पता नहीं, चारों वेदों का नाम गिना दो पर शर्मा जरूर लिखता है। ब्राह्मण का मतलब जो शास्त्रों को जानता है, ज्ञान को जानता है। आजकल की भाषा में अगर ब्राह्मण ढूंढेंगे, जो प्रोफेसर है, जो एकेडमिशियन है, जो साइंटिस्ट है, जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग, जो जिनका प्रोफेशन ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिनका जॉब भी ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो जीवन का व्रत जिनका ज्ञान लेना और देने में जुड़ा हुआ है, उनको आप ब्राह्मण कैटेगरी में रखेंगे। तो जनेऊ उसका पहचान था कि ये पढ़ा लिखा है, अगर बड़े उम्र में है, अगर छोटे उम्र में है कि तो ये विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ब्रह्मचारी है। प्राचीन भाषा में ब्रह्मचारी कहते थे स्टूडेंट्स को। वो उपनयन संस्कार करने के बाद वो विद्या का अधिकारी होता था। अब वो पढ़ गया, पढ़ सकता है। तो मतलब जनेऊ का संबंध पढ़ने लिखने से था। जब हमारे देशों में, पंडित देश में, पंडितों ने सोचा, तथाकथित ब्राह्मणों ने सोचा कि नहीं, हर जगह होता है, या हमारे यहां ब्राह्मण की बात नहीं, दुनिया में हर जगह इन्होंने कालों को कितने दिन तक गुलाम रखा। जैसे ही व्यक्ति, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो वो फिर मोनोपोली करना चाहते हैं। उनको समाज में कुछ ऐसे लोग चाहिए जो नौकरी चाकरी करें, जो उनकी नौकरी करें, जो गुलामी करें। तो हमारे यहां भी ये कुछ लोगों को ये सुझा और उन्होंने शुरू किया कि जो स्त्री जाति है, महिलाएं हैं, और जिसको शूद्र वर्ण कहते हैं, इन सबको गुलाम बनाना है। तो पहला काम क्या है कि ये अनपढ़ बनेंगे तभी तो आपके गुलाम बनेंगे ना, पढ़ा लिखा आदमी थोड़े ही गुलाम बनता है। पहले जमाने में किसी को अनपढ़ बनाने का पहला शर्त था उसकी जनेऊ छीन लो। इसीलिए शूद्रों का और स्त्रियों का जनेऊ करना बंद कर दिया, मतलब स्कूल में जाना, गुरुकुल में प्रवेश करना मध्य युग में बंद कर दिया। इतना महत्वपूर्ण था वो जनेऊ जो धागा था, क्योंकि वो बिल्कुल समाज को बदल डालता था। और हजारों सालों से जो मिडिल एज में शुरू हुआ जो समस्या, वो हजारों सालों तक हमारे यहां एक बहुत बड़े वर्ग को, पूरा का पूरा महिला समाज और शूद्र समाज को उसने निरक्षर अनपढ़ बना दिया। क्योंकि एक घर के गुलाम चाहिए, एक बाहर का गुलाम चाहिए, एक बैकयार्ड में चाहिए, एक किचन में चाहिए, वो तो अलग बात है। समाज बदला, समाज पढ़ा लिखा हुआ, सोच बदला, धर्मशास्त्रों का महत्व घटा, पंडितों का, ब्राह्मणों का महत्व घटा, तो समाज बदला। अब हर कोई पढ़ लिख जाता है पर मानसिकता वही है। तो कहने का उद्देश्य था वो जनेऊ का पढ़ने लिखने से संबंध था। श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो जनेऊ बदलते थे, जनेऊ पहनते थे, इसी भावना के साथ कि पढ़ना लिखना अब शुरू करेंगे। तो श्रावणी पूर्णिमा स्वाध्याय का पर्व था। और बड़े मजेदार चीज है, हम लोग तो पढ़ते लिखते इसीलिए हैं कि कमाना है, माँ बाप भी सिर्फ उतने ही पढ़ने के लिए हमें एनकरेज करते हैं जितने में तुम कमा सकते हो। मतलब बेटे मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, इसीलिए नहीं पढ़ना कि तुम्हें मैथमेटिशियन बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें हिस्टोरियन बनना है। पढ़ना है इसलिए कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी बड़ी नौकरी मिलेगी और उतना कमाओगे। कमाने के बाद पढ़ने लिखने की फालतू के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बीवी को घुमाने ले जाओ या पति के साथ कहीं घूमने जाओ, बच्चों के टाइम बुक लेकर बैठते हो कीड़े किताबी कीड़ों की तरह। अब घर में डांट भी पड़ती है कोई किताब पढ़ता है, अगर पति ज्यादा किताब पढ़ता है या पत्नी पढ़ती है तो डांट भी पड़ता है। इतना पढ़ते लिखते हो घर गृहस्थी सब भूल गया, लगता है तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं है, सब मेरी चिंता है, किताब लेकर बैठ जाते हो। बेचारे आजकल स्वाध्याय करने वालों के घर में भी मुसीबत है, उसका परिणाम क्या हुआ? हम अच्छे प्रोफेशनल बने, बाकी कुछ नहीं जानते। बाकी तो वो शुक्र करो वो इंटरनेट वालों का जो बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा अधकचरा ज्ञान मिल जाता है उसमें काम चला देते। जब ये इंटरनेट नहीं था तो हम कितने मूर्ख थे। सिवाय मैं अगर एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं एक टीचर हूं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स के बारे में पता क्योंकि रोज अखबार पढ़ता हूं, बाकी कुछ नहीं पता। बच्चों को पालना कैसे ये भी नहीं पता, मैं क्या हूं वो भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। क्यों? हमारे देश में स्वाध्याय, हमारी कम्युनिटी में स्वाध्याय के प्रति रुचि ही खत्म हो गया। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने एक त्योहार बनाया स्वाध्याय पर्व। और बड़े मजेदार बात देखिए, वो श्रावणी पूर्णिमा जो पढ़ने लिखने को रिवाइज करने के लिए था उसको तो हम हटा दिया, उसकी जगह रक्षाबंधन ले आए। भाई बहन की रिश्ता बांधने उसमें भी पैसा ढूंढते हैं, राखी बांधेंगे तो पैसा मिलेगा। वो बचाना किसी को नहीं है, किसी को नहीं चाहिए बचाना, बस उससे बदले कुछ मिलेगा। और हिंदू आप धर्म लीडर चिल्लाएंगे, देखो इससे हमारा धर्म प्रोटेक्टेड होता है, सिक्योर होता है। स्वाध्याय बड़ी जरूरी है। जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश पढ़ा लिखा नहीं है, मैं प्रोफेशनली एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कुछ जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो समाज, वो व्यक्ति, वो सोसाइटी, वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, वो कभी भी डेवलप्ड नहीं हो सकता। ऐसे लोग, ऐसा समाज, ऐसा देश ज्यादा अंधविश्वासी होता है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर इंजीनियर डॉक्टर तक भी दुनिया भर के सुपरस्टिशियन पाले रहते हैं। लोग सवाल पूछते हैं, अगर ये सुपरस्टिशियन है तो साइंटिस्ट होकर कैसे करता है? वो साइंटिस्ट है, प्रोफेशनली एजुकेटेड है, वो अपने प्रोफेशन को क्या है वो जानता है। पर प्रोफेशन तो सिर्फ ज्ञान नहीं है ना, जीने के लिए और भी हजार तरह के ज्ञान है, उस मामले में जीरो है। वो उतना ही जानता है जितना उस जिस बाबा का चेला बना है, उस बाबा ने जितना बताया। वो आलू को प्याज बताया तो प्याज ही मानता है आज भी, सूरज को चांद बताया तो आज भी चांद मानता है, क्योंकि इसकी बाबा ने उसको बोला, उसके गुरु ने उसको बोला कि ये सूरज नहीं चांद है। वहां साइंस काम नहीं करता, वहां इंजीनियरिंग वो इंप्लीमेंट नहीं करता है, क्योंकि खुद का स्वाध्याय नहीं रहा। आप देखेंगे तैतरीय उपनिषद में, ऐतरीय उपनिषद में ऋषि बोलता है, जब कन्वोकेशन होता है बच्चों का, मतलब जब बच्चे अपने आजकल तो ग्रेजुएशन हम शुरू से भी कर लेते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी का डिग्री हासिल कर लेता है, प्राचीन काल में उसको समावर्तन संस्कार कहते थे, जो 16 संस्कार में से एक संस्कार है। आजकल आप उसको ग्रेजुएशन कहे या कन्वोकेशन कहे, जब मास्टर डिग्री लेता है, करने के बाद गुरु शिष्य को कुछ समावर्तन के उपदेश देता था, एडवाइस देता था, बहुत पॉपुलर है, सब जानते हैं, सत धर्म सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो उसमें एक लाइन और भी है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। यहां से घर जा रहे हो 12 साल 15 साल 18 साल जो भी स्कूल तुमने यहां गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई की, अब मास्टर बनकर के वापस जा रहे हो, घर में अपना जो भी रोजगार करोगे, नौकरी करोगे, शादी करोगे, बच्चे होंगे, परिवार पालोगे, जो कुछ बनना है बनोगे, पर स्वाध्याय से कभी, स्वाध्याय को कभी इग्नोर नहीं करना, स्वाध्याय के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। पढ़ते लिखते रहना, पढ़ते लिखते रहना, कुछ भी हो पढ़ते लिखते रहना। श्रावणी पूर्णिमा उसी चीज को हमें याद दिलाता है, पढ़ते लिखते रहो, अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, जहां जो ज्ञान मिलता है उसमें कंप्रोमाइज मत करो। नहीं तो फिर हम अच्छा पैसा तो कमा लेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन के कारण, बहुत कुछ बना देंगे, पर हम रिलेशनशिप नहीं निभा पाते, सुख में दुख में आपको हैंडल करना नहीं जान पाते, हम जिंदगी के हर संकट में, अच्छे में बुरे में अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि उन चीजों का ज्ञान हमें नहीं है। श्रावणी पर्व का पहला संदेश होता है कि स्वाध्याय करो, ये श्रावणी पर्व। आज और एक बड़ा त्योहार है, और ये त्योहार आजकल ज्यादा पॉपुलर हो गया, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी बड़े बड़े त्योहार हैं, वो उनका जो एंशियंट फॉर्म था, जो प्राचीन रूप था, वो धीरे धीरे छुपता गया, उसके जगह मॉडर्न फॉर्म लेते गए, आधुनिक आधुनिक चीजें लेते गए हर त्योहार में। तो श्रावणी पूर्णिमा भी धीरे धीरे रक्षाबंधन में कन्वर्ट होता गया। अब ज्यादातर लोग श्रावणी पूर्णिमा का नाम भी नहीं सुनते, पर आज भी जो ट्रेडिशनल जो अपनी संस्कृति को समझते हैं, वो दक्षिण से लेकर कश्मीर तक आप निभाते हैं, पर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं समझते। दूसरा जो सबसे बड़ा आज जो महत्वपूर्ण त्योहार है वो है रक्षाबंधन। आजकल तो बहन भाई से राखी बांधती है, पर ये रक्षाबंधन का भी एक बड़ा सुंदर हिस्ट्री है, ये भी समझने लायक है। रक्षाबंधन था, ये भी एक प्राचीन परंपरा है, श्रावणी पूर्णिमा के दिन ये नहीं होता था, वो बाद में जुड़ा, पर रक्षाबंधन की ट्रेडिशन हमारे यहां बहुत पुराना था। पुरोहित जो राज पहले जो राजा हुआ करते थे, तो राजा के सभा में बहुत सारे मंत्री होते थे, और चाणक्य अर्थशास्त्र में, महाभारत में 18 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स तो हुआ करते थे, तो उसमें एक मिनिस्टर हुआ करता था पुरोहित। पुरोहित जिसको आज भी आप पुरोहित कहते हैं, जो घर में हवन पूजा पाठ करते, वो पुरोहित, उसको इसीलिए बोला जाता था पुरोहित, पूरा मतलब सामने, हित मतलब कल्याण, जिसके सामने दूसरों का कल्याण ही प्राइमरी होता था, अपने बारे में जो नहीं सोचता था। राजा के जो मंत्री होते थे, बाकी जो 17 टाइप के मंत्री होते थे, वो पेड होते थे, मतलब पैसा लेते थे, पुरोहित पैसा नहीं लेता था, वो स्वाभाविक सेवा देता था, वो जो काम करता था उसके बदले वो दक्षिणा लेता था, और दक्षिणा एक तरह के फी होता है, और सैलरी एक तरह के आपको बांधता है, आपको मजबूरी बनाता है, आपको मालिक के सामने वही एक्सेप्ट करना है जो मालिक को मंजूर है, वो कहे दिन रात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या नौकरी छोड़नी पड़ेगी, देयर इज नो अदर चॉइस, आपके पास कोई अदर वे नहीं है, या तो नौकरी छोड़ो या अगर मालिक बोलता है दिन रात है तो रात मानो। इसीलिए जो ज्ञानी और विद्वान लोग, उनके लिए हमारे यहाँ सैलरी की व्यवस्था प्राचीन काल में नहीं होता था, इसीलिए ब्राह्मण मतलब जो ज्ञानी, मैं आजकल के शर्मा जी की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी लोग दक्षिणा से उनका संबंध होता था, एक तरह का फी है, वो आपको गुस्सा आया, उनको पसंद नहीं आया, वो चले जाएंगे, वो आपके घर में करेंगे नहीं ना, आपसे लेने वाले हैं, कोई नौकरी नहीं है कि जिंदगी भर के बंधे हुए हैं। राजा को पुरोहित राखी बांधता था, आजकल की तरह डिजाइन वाला नहीं है, धागा बांधता था, इस प्रॉमिस के साथ कि आप देश की भलाई की, अपने राज्य की भलाई की चिंता करेंगे। बाकी मंत्री कभी कभी कंप्रोमाइज करते थे, क्योंकि उन दिनों कोई गवर्नमेंट नाम का सिस्टम तो इतना नहीं था, राजा को गुस्सा आया सरकार देगा, नौकरी से हटा देगा, तो देश में दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ा हुआ है, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, मंत्री कहेंगे सब ठीक है राज्य में, महाराज आपके राज्य में गड़बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती है, अब महान है। पर पुरोहित उसका नाम इसीलिए है कि वो किसी के डर, किसी के क्रोध के लिए, किसी से कुछ पाने के चक्कर में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो बोलता था, और वो राखी बांध, वो जो रक्षा का धागा बांधता था राज्य की सुरक्षा की प्रतिश्रुति लेने के लिए, पुरोहित राजा का संबंध था। इसी तरह धीरे धीरे ये संबंध बढ़ा, राजा प्रजा से लेकर के घर में पति पत्नी आप एक दूसरे को राखी बांधते थे कि एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, बच्चे माँ बाप की रक्षा बांधते थे, जहां भी रक्षा की प्रतिश्रुति लेनी होती थी, सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए होता था, वह उसे प्रॉमिस करना होता था, तो वो एक परंपरा हमारे यहां बनी। पर धीरे धीरे वो भाई बहन के पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और जैसे ही कोई त्योहार चल पड़ते, हमारे यहाँ बने बनाए विद्वान भी होते हैं, फटाफट नरेशंस बनाने के लिए, कहानियां बनाने के लिए, फिर कहानियां शुरू हो गई, अकबर के हाथ में किसने बांधी, हुमायूं के हाथ में अमुक ने बांधी, अमुक में हाथ में अमुक बांधी, वो किराए के पंडित होते हैं, वो नरेशंस बना देते हैं, और संसार चल पड़ता है, कहानियां चल पड़ती है। आगे की ओर चलते हैं रक्षाबंधन के बाद। और रक्षाबंधन क्या था? पहला श्रावणी पूर्णिमा आज जो शास्त्रों की रक्षा के लिए, ज्ञान की रक्षा का पर्व था, स्वाध्याय पर्व। दूसरा त्योहार क्या है? रक्षाबंधन है, देश की समाज की रक्षा के लिए। ये क्षत्रिय का पर्व है, ध्यान रखिए, रक्षाबंधन जो है, मतलब जो राजा है, जो पुलिस है, जो आर्मी है, जिनका काम है समाज को रक्षा करना, ये रक्षाबंधन उनका त्योहार था। और श्रावणी पूर्णिमा किसका त्योहार है? ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का, टीचरों का, जो ज्ञान से संबंधित रखते हैं। आज हमारे डीएवी मॉन्टेसरी स्कूल के टीचर्स आए, वो टीचर्स का पर्व था श्रावणी पूर्णिमा। आज और एक पूर्णिमा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, आज और भी एक बहुत बड़ा त्योहार है, भारत के बहुत सारे भागों में ये मनाया जाता है, इसको बलराम पूर्णिमा या गोवर्धन पूजा कहते हैं। आजकल तो गोवर्धन पूजा के नाम पर पहाड़ बनाकर 56 तरह के खाना बनाकर रख देते हैं। गो मतलब गाय, जो कैटल्स होते हैं, गाय बैल वगैरह, उनको बढ़ाने का त्योहार था बलराम पूर्णिमा। बलराम का जन्मदिन है, 8 दिन के बाद आप जन्माष्टमी मनाएंगे, श्री कृष्ण की जयंती मनाने जा रहे हैं। बलराम गायों का सेवक था, इसीलिए इस दिन को हम गो पूर्णिमा के रूप में, गाय की सेवा के रूप में, आज के दिन बहुत सारे भारत में भी, आज भी बहुत सारे राज्यों में, आज गायों को जो बैल घर होते हैं उनको नहा धुला करके हरी हरी घासें खिलाते हैं, उनको टीका करते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना आज खिलाते हैं, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर आज भी भारत में बहुत सारे राज्यों में त्योहार मनाया जाता है। और गाय किसका विषय है? वैश्यों का, जो व्यापारी वर्ग है, जो धन कमाने के वर्ग है। आज तीनों वर्णों का पर्व है, एक ज्ञानी विद्वानों का स्वाध्याय पर्व है, क्षत्रियों का रक्षा पर्व है, वैश्यों का गो पर्व है। आज एक चौथा सेलिब्रेशन है, आज संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। 40-50 बहुत सालों से भारत सरकार इसको घोषणा कर रखा है, संस्कृत भाषा, बोले लैंग्वेज ऑफ एनलाइटनमेंट। अगर आप सचमुच आपको कोई गहरा ज्ञान चाहिए खुद के बारे में, वो दुनिया का कोई भी विषय हो, अगर आपको ये समझना है कि उसका इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है, वो कितना भी मॉडर्न साइंस हो या एंशियंट नॉलेज हो, उसका इंडियन एस्पेक्ट समझना हो, तो आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। आप राजनीति, भारतीय राजनीति समझना चाहते हैं, भारतीय इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन थॉट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जानना चाहते हैं, आप हमारे वार साइंस जानना चाहते हैं, आपको केवल लोगों को तो संस्कृत के साथ धर्म को जोड़ दिया, पर संसार में कोई भी विद्या जिसका भारतीय पक्ष समझना हो, इंडियन एस्पेक्ट समझना हो, वो सारे संस्कृत में है। और धीरे धीरे संस्कृत भाषा को सम्मान देने वाले इंडियन कम होते जा रहे, वो अलग बात है कि वेस्टर्न लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक बार वो एक प्रेसिडेंट थे भारत में, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, वो बड़े संस्कृत के विद्वान थे, तो बार बार सभा में कहा करते थे कि चिंता नहीं करने की बात है, भारत में अगर कोई संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ो। अब क्या है, संस्कृत पढ़ने वाले लोग जो रहेंगे, अब यही होगा कि आज इंडियन लोग इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी, मेडिकल साइंस में, अलग अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने के लिए वेस्ट जाते हैं, यूरोप और अमेरिका जाते हैं, अगले 50 साल के बाद संस्कृत में एक्सपर्ट बनने के लिए जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे। और सचमुच आज यही हो रहा है, वो तो बड़े बड़े संस्कृतिस्ट भी आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में ही मिलते हैं, भारत में नहीं मिलते हैं, ये बड़ी विडंबना है, देखिएगा। तो आज वो संस्कृत दिवस है। ये चार अलग अलग त्योहारों का आज बड़ा सम्मिश्रण है, इसलिए मैंने कहा आज बड़ा शुभ दिन है, आज बहुत ही यूनिक डे है, इतने सारे त्योहारों का दिन है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। और हमारे यहाँ और एक खास दिन है कि हमारे जो आज अपने आर्य समाज का जो मॉन्टेसरी स्कूल है उसके टीचर्स आज वहाँ अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ है, तो उनके बारे में भी दो चार बातें कहने को मन करता है, क्योंकि जो परिश्रम जो त्याग वो स्कूल में करते हैं, अगर आपको देखना है आपको जानना है जरूर कभी मॉन्टेसरी स्कूल में जब क्लास चलता है तो जरूर जाइए, आधा एक घंटा दो घंटा बिताइए, जो पेरेंट्स हैं वो जानते होंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये छोटे छोटे ननिहाल बच्चों को उनको जिनको माँ बाप खुद परेशान हो जाते हैं छुट्टियों में पकड़ा देते हैं, टैबलेट खेलो टाइम पास करो हमें छुट्टी दो टीवी देख करके टाइम पास करो, और उनको बिना किसी टीवी के बिना किसी टैबलेट के उनको आठ आठ घंटे हैंडल करना, वो भी उनको एजुकेशन देते हुए, ऐसा नहीं कि खाली बैठा करके टाइम पास कराना, पढ़ाई लिखाई के साथ उनको डिसिप्लिन सिखाने के साथ इंडियन कल्चर सिखाने के साथ मॉडर्न एजुकेशन देने के साथ उनको उनके साथ डील करना अच्छे सात आठ घंटे तक, ये कितना कष्ट का काम है, जो लोग करते हैं जो लोग देखते हैं उनको पता है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमारा सम्मान उनके प्रति बढ़ जाता है। हमारे प्राचीन उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद में मंत्र आता है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। वैसे कुछ लोग उसको खाते खाते समय आजकल बोलते हैं। स्वाध्याय कम होने पर क्या होता है, करोड़ों लोग कैसे भ्रष्ट हो जाते हैं इसका नमूना होता है। आजकल बहुत सारे लोग इसको खाते समय बोलते सहना भवतु, ये विद्या का मंत्र है, गुरु और शिष्य का मंत्र है, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हे ईश्वर हम दोनों को साथ साथ रक्षा करो, सहनौ भुनक्तु हम दोनों को साथ साथ पालो, सहवीर्यम करवा भई हम दोनों स्टूडेंट और टीचर जो कुछ भी करे वो वीर्यशाली हो वो तेजस्वी हो, मां विद्विषा भई हम एक दूसरे की प्रति कोई द्वेष भाव न रखे। अब मुझे नहीं पता कैसे कुछ लोगों ने इसका मंत्र कहां से बगाड़ा, अब वो भुनक्तु शब्द से खाना ले लिया, अब अगर अर्थ निकाले तो होगा ये भगवान हमको साथ साथ खाएं। अब क्यों खाते समय लोग मंत्र बोलते हैं, मैं समझा समझा कर थक गया बहुत सारे लोगों को, पर जब परंपरा चल पड़ती है वो अंधी होकर चलती है, कोई ना वहां आग दिखता है ना प्रकाश दिखता है, परंपरा तो अंधी ही चलती है, तो अंधी चल पड़ी। तो यही टीचर और स्टूडेंट विद्यार्थी और गुरुओं के प्रति गुरुओं का जो संबंध है जो उसको दिखाता है। यकीन मानिए सज्जनों देवियों, माँ बाप का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों के प्रति उससे कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, और खास करके जो छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ानी होती है। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में ये तैतिरीय उपनिषद में वाक्य आता है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्योत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। अगर सचमुच आपको ज्ञान का विकास करना है तो ज्ञान जो नॉलेज है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो टीचर होता है, गुरु होता है, उसका जो सेकंड नेसेसरी चीज है वो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, और उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है जो लिंक है वो टीचिंग है। और उससे होगा क्या, अगर सही गुरु सही विद्यार्थी हो और सही टीचिंग मेथड हो तो उससे ज्ञान पनपता है, ज्ञान बढ़ता है, यही गुरु का महत्व है। और इसीलिए हमारे यहाँ गुरुओं के प्रति जो सम्मान भाव है वो इसीलिए है कि गुरुओं का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना है। वो अलग बात है कि उसको भी हाईजैक कर लिया बाबाओं ने, पंडितों ने, वो सन्यासियों ने, गुरुओं ने हाईजैक कर लिया, बेचारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर तनखा में रह गए, और जो कभी एक बार गायत्री मंत्र समझा करके गुरु बन गया साल भर भक्त उसी के चरण में गिर गए। ये बड़ा बड़ा अद्भुत समाज है हमारा, असली गुरुओं को तो हम पूछते नहीं है और नकली गुरुओं को गुरु भगवान बना करके पूजने लग जाते हैं। ये बड़ा विचित्र मानसिकता है हिंदुओं की, ये बदलने की जरूरत है। सज्जनों देवियों, जब आप हवन करते थे ना तो हवन में जो लकड़ियां आप डालते हैं उसको समिधा बोलते हैं। समिधा का अर्थ होता है जो अच्छी तरह जलता है। समिधा के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए गुरुकुल में जो प्राचीन काल में ब्रह्मचारी विद्यार्थी होते थे उनको गुरुकुल में जो उनको सर्विस करना होता था, पहला काम होता था समिधाएं कलेक्ट करना। हमारे शास्त्रों में उपनिषदों में आता है कि आचार्य अग्नि ही, जो टीचर है वो आग है, शिष्य अंतेवासी समिधा, जो स्टूडेंट है वो तो समिधा है, लकड़ी है। क्योंकि आग अपने आप में नहीं जल सकता, आग को कोई सहारा चाहिए ना। जब लकड़ी जलती है तो वो आग है, बिना लकड़ी के आग नहीं होता ना। आग तो एनर्जी में बना रहता है, उसको कोई सहारा चाहिए, कुछ जलने लायक फ्यूल चाहिए, जिसको आप ईंधन कहते हैं। कल तक टीचर जो था वो स्टूडेंट था, वो समिधा था, लकड़ी थी, वो गुरु के पास रह रह करके तप तप करके अपने आप को आग बनाया, आज वो आग जल रहा है। फिर आप नई लकड़ी डालते हैं, वो नई लकड़ी भी जैसे ही अग्नि के सानिध्य में आता है वो धीरे 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 अग्नि को आत्मसात करता है, एक्सेप्ट करता है और खुद आग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे वो समिधा के तरह हैं, वो घड़े के तरह हैं, कच्चे घड़े के तरह, जिनको ठोक पीट करके हमारे जो टीचर्स हैं उनको उनको सही बनाते हैं। तो अच्छा है कि हम उन टीचरों को दिल से रेस्पेक्ट करें, सम्मान दें, वो अमेरिकन स्टाइल में नहीं इंडियन स्टाइल में उनको वो सम्मान दें, उनके प्रति अंदर वो सम्मान भाव रखें कि हमारे उन बच्चों को जिनको हम माँ बाप होकर भी उनको संभाल नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, दुनिया भर के टाइम पास के खिलौना पकड़ा करके उनको बिजी रखते हैं, हमारे उन बच्चों को हमारे ये पूजनीय टीचरों ने उनको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, उनके प्रति भी हमारा प्रणाम है। आज के इस सुंदर शुभ दिन पर हम उन शिक्षकों को प्रणाम करते हैं जो हमारे बच्चों को इतना अच्छी शिक्षा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और दोबारा आप सबको अभिनंदन है, श्रावणी पूर्णिमा का स्वाध्याय जरूर करें, आपको अभिनंदन है रक्षाबंधन का, अपने देश समाज की रक्षा के लिए व्रत लें, आप सबको अभिनंदन है गोवर्धन पर्व का, अपनी गाय माता की रक्षा के लिए जितना हो सके संकल्प करें, और आप सबको अभिनंदन है संस्कृत दिवस का, ये हमारा गौरव है, हमारे देश का गौरव है कि संस्कृत भाषा भारत में पनपी है, जिसके कारण हमारे पास इतने तरह के शास्त्र मौजूद हैं। आप सबको दोबारा बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, ओम शांति शांति शांति।